पृष्ठ संख्या 7, अध्याय 1। कर्जन रोड से हटकर वह फिरोजा शाह रोड पर आ गया। मोटरों स्कूटरों का ताता यहाँ सहसा कम हो गया था। ट्रैफिक का शोर थम गया था। उसे लगा जैसे सड़क खुलकर और चौड़ी हो गई है। दोनों ओर छोटे छोटे बंगलों की पीली दीवारों पर नवंबर महीने की दोपहरी की हल्की हल्की धूप खिली थी। वह पहले से ज्यादा आश्वस्त महसूस करने लगा। सुषमा का फ्लैट अब बहुत पीछे रह गया था। अब आशंका का कोई कारण नहीं था, ना तो सुषमा के फ्लैट में से निकलते समय ही और ना सड़क पर किसी परिचित ने उसे देखा था। यों दिन के वक्त सुषमा के फ्लैट में जा पहुंचना और ऐन ऐसे वक्त वहां से निकलना जब दफ्तर बंद हो रहे हों, बड़े जोखिम वाली बात थी। उसने जेब में से रुमाल निकाल कर फिर एक बार अपना चेहरा पोंछा, अपने होंठ पोंछे, कंधों और कॉलर पर से अपना कोट पोंछा। उसे लगा जैसे सुषमा के शरीर की गंध अभी भी उसके कपड़ों में अटकी हुई है, जिसे वह निकाल नहीं पाया। वह धीमी सी गंध उसे अधिक तीखी लगने लगी थी। सुषमा का शरीर भी उसे अधिक स्थूल, अधिक मांसल लगने लगा था। एक जगह पर सड़क के किनारे एक माली घास को पानी दे रहा था। पानी देने का नल घास की सतह पर ही चश्मे के पानी की तरह फूट फूट कर निकल रहा था और उसके साथ रबर की नली रखी थी। महेंद्र ने पास से गुजरते हुए झट से झुक कर उस उफनते पानी से कुल्ला कर लिया और रुमाल से हाथ मुंह पोछता हुआ नज़दीक की मौलश्री के एक पेड़ के नीचे बेंच पर जा बैठा। वह बेहद उखड़ा उखड़ा महसूस कर रहा था और घर लौटने से पहले अपने विचारों को तरतीब दे देना चाहता था। सुषमा के फ्लैट में से निकलते समय सुषमा की नज़र उसके कॉलर के पास अटके एक लंबे से बाल पर पड़ गई थी और सुषमा की आंखें फैल गई थीं और भागकर ब्रश उठा लाई थी। हाथ मुंह धो लो, उसी ने कहा था, और उसे स्वयं पृष्ठ संख्या 8 गुसल खाने में धकेल दिया था। पर उसे लगा जैसे सुषमा के सिर का बाल अभी भी उसके कपड़ों में कहीं अटका हुआ है और उसके पाउडर की गंध और शरीर की गंध उसे अपनी लपेट में लिए हुए है। उसने सिर झटक दिया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, एक छोटी सी बात को धूल दिए जा रहा हूँ। सुषमा के फ्लैट की घंटी बजाने से पहले क्षण भर के लिए उसका हाथ ठिठका था। क्षण भर के लिए उसकी टांगों में भी हल्का सा कंपन हुआ था और उसकी सांस तेज चलने लगी थी। पुराने संस्कार हैं, उसने मन ही मन कहकर सिर झटक दिया था और घंटी बजा दी थी। सुषमा से मिल पाने की उत्तेजना एक बाढ़ की तरह उसे सिर से पांव तक सराबोर कर गई थी। थोड़ी देर तक अंदर से कोई आहट नहीं आई तो वह शंकित हो उठा था कि सुषमा घर पर है भी या नहीं। वही मन जो घंटी बजाने से पहले ठिठका था, अब अंदर से उत्तर ना मिलने पर खिन्न और हताशा अनुभव करने लगा था। घंटी बजाने के बाद भी वह लौटना चाहता तो लौट सकता था, केवल पीठ मोड़कर सीढ़ियाँ उतर जाने की बात थी। फिर अंदर दरवाजे के पीछे कदमों की आहट आई थी और उसका दिल फिर से धक धक करने लगा था। कौन है? मैं हूँ महेंद्र, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा। दरवाज़ा खुलने पर सुषमा ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसकी ओर देखते हुए धीमी अलसाई सी आवाज़ में कहा था, आओ। सुषमा जब भी बात करती निसहाय धीमी सी आवाज़ में, मैं डरती थी तुम नहीं आओगे, उसने पलकें उठाकर धीमे से कहा और चुपचाप शिथिल सी एक ओर को दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। सुषमा की बड़ी बड़ी आँखों और बेहोश होती सी आवाज़ में उसे क्षण भर के लिए हल्के से स्वांग का भास हुआ था, पर क्षण भर ही बाद उसे उसी आवाज़ में गहरे अपनत्व का, आत्मीयता का भास भी होने लगा था। दोनों अंदर आ गए थे और महेंद्र दीवार के साथ लगी सेटी पर बैठ गया था। महेंद्र ने मुस्कुराने की कोशिश की थी, दबी सी फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर आई थी। उसके मन में एक प्रकार की जड़ता आ गई थी। अंदर कदम रखते पृष्ठ संख्या 9 ही जैसे उसकी छाती पर मानो बोझ पड़ गया हो। उसकी आँखें अपलक सी सुषमा के कंधे को देखे जा रही थीं, पर उसी समय उसे उस कमरे की और सुषमा के शरीर की विशिष्ट गंध का भी भास होने लगा था। मैं हर रोज़ तुम्हारी राह देखती रहती हूँ, हर रोज़ अपने को यह कहकर झुठलाती रहती हूँ कि आज तुम जरूर आओगे, आज जरूर आओगे। सुषमा ने साड़ी के पल्लू को, जो कंधे पर से फिसल रहा था, कंधे पर रखते हुए कहा, और फिर महेंद्र के दोनों हाथ अपने हाथों में लेती हुई उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मेरे लिए तुम्हारे पास कोई समय नहीं है ना? मैं तुमसे कुछ मांगती तो नहीं हूँ? सुषमा ने अपनी टूटती बेहोश होती सी आवाज़ में कहा था। तुम मुझसे कटे कटे क्यों रहते हो? नहीं, यह बात तो नहीं है, महेंद्र ने लड़खड़ाती सी आवाज़ में कहा था और फिर सामने की ओर देखने लगा था। मैं तुम्हें किसी से छीन तो नहीं रही हूँ? सुषमा की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा अलसा गई थी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती महेंद्र, केवल कभी-कभी तुम्हारे साथ 2 घड़ियाँ बिताना चाहती हूँ, बस इतना ही। इसमें किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए? तुम्हारे वक्त से जो 2 घड़ियाँ टूटकर मेरी गोद में पड़ जाएं, मैं उन्हीं से संतुष्ट हूँ। क्षण भर के लिए महेंद्र को ये वाक्य किसी नाटक के रटे रटाए वाक्य से लगे थे, शायद बीसियों बार दोहराए हुए। ये सब गुदगुदी बातें हैं, औरत का पुराना हथियार है एक मीठी फरेब, जिसके प्रभाव को स्त्रियां भली भांति जानती हैं, पर दूसरे ही क्षण उसे सुषमा के ये वाक्य सब प्राण और सच्चे भी लगने लगे थे, जैसे सुषमा की आत्मीयता ने उनमें प्राण फूंक दिए हों। अगर यह फरेब भी है तो भी मैं इसमें डूबे रहना चाहता हूँ, इसमें खोए रहना चाहता हूँ। तुम कितने थके थके लग रहे हो, क्या तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है? बहुत काम क्यों करते हो? और सुषमा उसके नज़दीक सिमट आई थी और उसका हाथ महेंद्र के हाथ को सहलाने लगा था। क्या बहुत सोचते रहते हो? उसकी आंखें एकटक महेंद्र के चेहरे पर लगी थीं। सहसा वह सीधी होकर बैठ गई थी। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, चाय पियोगे ना? और वह उठकर हल्के हल्के पांव रखती हुई रसोई घर की ओर जाने लगी थी। जाने से पृष्ठ संख्या 10 पहले आंगन की ओर खुलने वाली दोनों खिड़कियों पर पर्दा गिराती गई थी। अब आंगन पार के फ्लैटों में से अंदर कोई नहीं देख सकता था। पर्दे गिरा देने से कमरे में अधिक स्निग्धता आ गई थी। यों भी कमरे के वातावरण में अलसाहट थी, विलास का भास मिलता था। यहाँ समय धीमी गति से चलता जान पड़ता था। रेशमी कपड़ों में लिपटा सा सामने सोफा कुर्सी की पीठ पर सुषमा की एक साड़ी अस्त व्यस्त सी पड़ी थी और ब्लाउज बाँह पर से नीचे लटक रहा था। दफ्तर से लौटने पर उसने साड़ी बदल ली होगी, महेंद्र ने सोचा। रंगों के चुनाव में लाल रंग कमरे में अधिक छिटका हुआ था। सेठी का कवर लाल रंग विलासिता का रंग है, काला रंग शायद घोर वासना का रंग है, फुफकारते नागों का रंग है। उसने किसी के वाक्य को मन ही मन दोहराया। सामने की दीवार के साथ रखे एक सोफे पर कुछ एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बिखरे पड़े थे और बगल में एक तिपाई पर ग्रामोफोन खुला रखा था। लगता था उसके आने से पहले सुषमा रिकॉर्ड बजाती रही थी। इसी कमरे में सुषमा का ड्रेसिंग टेबल भी था, जहाँ एक ट्रे में बहुत सी कांच की चूड़ियाँ, झूठे मोतियों और तरह तरह के मणकों के हार, 3-4 तरह की लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, डॉट डॉट। महेंद्र की उत्तेजित कल्पना सुषमा को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े श्रृंगार करते देखने लगी। इस घर में पालतू बिल्ली भी होनी चाहिए, उसने मन ही मन कहा था, जिसे सुषमा गोद में लेकर सहलाती रहती होगी। बिल्ली इस वातावरण के अनुकूल बैठेगी। तभी अनायास उसकी नज़र अंगीठी पर गई। छोटी छोटी गुड़ियाँ पुरुष और स्त्री के मिट्टी के बने दो चेहरे एक ही ओर देखते हुए और अंगीठी के ऐन ऊपर एक छिपकली, वह छिपकली की ओर देर तक देखता रहा था। जब वह हिली डुली नहीं तो वह उठकर अंगीठी के पास चला गया और वहाँ खड़े खड़े उसे देखने लगा। तभी दो प्याले हाथ में उठाए सुषमा कमरे में आई थी और उसे छिपकली की ओर देखते हुए हंस पड़ी थी। बहुत लोगों को सचमुच ही छिपकली का धोखा होता है। लो, ना जाने किस मिट्टी में से बनाई गई है, पर हूबहू छिपकली सी है। कहते हुए वह महेंद्र के साथ सेटी पर बैठ गई थी। तभी सचमुच एक सफ़ेद गुदगुदी सी बिल्ली किचन में से उसके पीछे पीछे चली आई थी और कूद कर सुषमा की गोद में चढ़कर बैठ गई थी। तुम्हें बिल्ली पालना अच्छा लगता है? यह तो बड़ी प्यारी बिल्ली है। मुझ अकेली को इसी का सहारा है, सुषमा ने बिल्ली को सहलाते हुए कहा। फिर प्याला नीचे रखकर बिल्ली को दोनों हाथों से उठा लिया। पृष्ठ संख्या 11 और उसकी पीठ अपने गाल के साथ सटाकर बोली, यह रोज रात को चुपचाप मेरे बिस्तर में आकर सो जाती है। यह बड़ी अच्छी है। यह ना हो तो यह फ्लैट मुझे काटने को दौड़े। और सुषमा ने बिल्ली को थूथने पर चूम कर नीचे फर्श पर रख दिया। चाय पीने के बाद वह एक बार सहसा उठ खड़ा हुआ था। मैं सोचता हूँ अब मैं चलूँगा। पर सुषमा महेंद्र के शब्दों से विचलित नहीं हुई थी। इसके विपरीत वह समझ गई थी कि अब महेंद्र नहीं जाएगा। वह जानती थी कि दुविधा की भीड़ पर आखिरी धक्के पड़ रहे हैं और वह शीघ्र ही भुरभुरा कर गिर जाएगी। जाओगे इतनी जल्दी? अभी तो आए हो, सुषमा ने जख्मी सी आवाज में कहा था। मेरा तुम पर कोई हक नहीं है क्या? और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। दफ्तर में तो तुम मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सुषमा ने हंसकर कहा। दफ्तर में मेरा बड़ा जी चाहता है तुम्हारे साथ बातें करूं, सीधी तुम्हारे कमरे के अंदर चली जाऊं और तुम्हारे सामने जाकर बैठ जाऊं, पर तुम मेज पर से सिर ही नहीं उठाते, गुमसुम बने रहते हो। नहीं, ऐसा मत करना, महेंद्र ने सचेत होकर कहा था। ऐसा नहीं करना, लोग बातें बनाएंगे। हाय, नहीं मैं क्यों ऐसा करने लगी? मैं तो कई बार फाइल उठाकर जाती हूँ और तुम्हारे दरवाजे पर से ही लौट आती हूँ। चपरासी ने एक बार कहा भी कि साहब खाली हैं, फिर भी मैं नहीं गई। उसका हाथ फिर से महेंद्र के कोट के कॉलर के साथ खेलने लगा था। महेंद्र की कमीज का एक बटन टूटा देखकर सुषमा की आंखें फैल गई थीं। मैं अभी लगा देती हूँ, उसने कहा था और उठकर ड्रेसिंग टेबल की ओर चली गई थी। तभी जब सुई धागा दांतों के नीचे दबाकर डिबिया में से बटन निकालती हुई चली आई थी और उसके कोट का बटन खोलकर कमीज में बटन टाँकने लगी थी, तभी गहरी आत्मीयता की लहरें भी उठने लगी थीं और सुषमा अपनी लगने लगी थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां और माथे पर झूलती हुई उसके बालों की लट। तभी सुषमा के होठों के ऊपर उसे हल्के हल्के नमी के कतरे नजर आए थे और उसने अनायास ही रुमाल निकाल कर उन्हें पोंछ दिया था। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी देखभाल नहीं करती? सुषमा ने उलाहने के से स्वर पृष्ठ संख्या 12 में कहा। फिर गंभीर होकर बोली, तुम्हें कोई क्लेश तो नहीं महेंद्र? तुम अपने सारे क्लेश मुझे दे दो, उसने फिर अलसाई टूटती सी आवाज में कहा। महेंद्र थोड़ी देर तक चुप बना रहा था, फिर बोला, ठीक है, चल रहा है। कभी कभी मेरा इतना जी चाहता है मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊं, तुम्हारे कपड़े तह करके रखा करूं, तुम्हारी चीजों को दिन में बीसियों बार छूती रहा करूं। सचमुच महेंद्र, मुझे क्या हो गया है? ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। परसों तुम दफ्तर में नहीं आए, मुझे इतना सूना सूना लगा, मैं अपने कमरे में बैठ ही नहीं सकी। रात को लेटती हूँ तो सोचती रहती हूँ इस वक्त महेंद्र क्या कर रहा होगा। वह लेटे लेटे किताब पढ़ रहा होगा, अपने बेटे के साथ खेल रहा होगा। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है, अपना घर मेरा अपना घर है। कहते हुए सुषमा की आंखें भर आई थीं और वह महेंद्र के पास सट आई थी। यह मुझे क्या हो गया है महेंद्र? मैं दिन रात तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ, मैं अपना सब कुछ खो बैठी हूँ। क्षण भर के लिए महेंद्र को फिर रटे रटाए वाक्यों का भास हुआ। सब गुदगुदी बातें हैं, सुषमा झूठ बोल रही है। यह बीसियों के साथ शायद ही झूठ बोल चुकी होगी। यह झूठ है, पर यही झूठ मैं बार बार इसके मुंह से सुनते रहना चाहता हूँ। वासना के साथ साथ प्रेम के छोटे छोटे झूठ बोले जाते हैं ताकि वासना निपट वासना ना लगे। प्रेम में भीगी भीगी वासना, वासना के साथ साथ प्रेम की बातें फपती हैं। इनसे वासना की नग्नता छिपी रहती है। क्या मालूम, शायद वासना में से ही प्रेम का जन्म होता है। उसने आंखें उठाकर सुषमा के चेहरे की ओर देखा था। सुषमा के होंठ गदराए हुए हैं, प्यारे हैं। सुषमा मेरी है, इसका अंग अंग मेरा अपना है। सुषमा कितनी निरीह सी है। उस समय आत्मीयता का ज्वार सा उठा था और सब संशय सब संकोच बहा कर ले गया था। हवा में पतझड़ की गंध थी। सड़क के किनारे माली ने बहुत से सूखे पत्ते बटोर कर जला दिए थे और उनकी कड़वी गंध हवा में फैल गई थी। दीवारों पर से दोपहर की झीनी सी धूप की परत झर कर गिर गई थी। मृत प्राय रोगी के चेहरे पर आई क्षणिक क्रांति की तरह, और आकाश में से अवसाद के साए उतरने लगे थे। महेंद्र का मन फिर खिन्न हो उठा था। जिंदगी के 35 वर्षों का जिस निष्ठा को सर्वोपरि मानकर संजोए हुए था, उसे एक दिन में लुटाया हूँ। मैं कितना कमजोर आदमी हूँ। उसकी आंखों के सामने प्रमिला का, अपनी पत्नी का चेहरा उभर आया। सुषमा की तुलना में प्रमिला में कितना बागपन है, कैसी देवी सी पृष्ठ संख्या 13 लगती है। उसका शरीर का सारा गठन निखरा निखरा सा और आश्वस्त। घर में घंटों छोटे छोटे कामों में उलझी शांत और स्थिर बनी रहती है। उसके मन को कोई बात व्याकुल नहीं करती, वह छटपटाती नहीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में विश्वास छाया रहता है। मेरे जीवन में यदि कोई स्थिरता है तो उसी के कारण बनी हुई है। महेंद्र अपनी मानसिक छटपटाहट के बावजूद हंस दिया। जब घर पर होता हूँ तो प्रमिला फूहड़ लगने लगती है, जड़ बासी, जिसके शरीर से और कपड़ों से बासी गंध उड़ती रहती है। पिछड़ी घरेलू प्रमिला, और मुझे लगता है मेरे पैरों में जंजीरें पड़ी हैं। तब सुषमा के प्रति स्नेह के अतल सोते फूट उठते हैं और उत्तेजना का ज्वार सा उठने लगता है और मन सुषमा के पास जाने को तड़पने लगता है। यह क्या ड्रामा चल रहा है मेरे साथ? सामने वाले बंगले में से काले रंग का बैग झुलाते हुए एक महिला निकली, अल्हड़ सी गदराए शरीर वाली महिला, जो सड़क पर पहुंचकर भी बच्चों की तरह बैग झुलाए जा रही थी। सफ़ेद सी रंग की साड़ी पर ग्रे रंग का बढ़िया सा शाल कंधों पर रखे थी। दो एक बार पीछे मुड़कर उसने बंगले की ओर देखा, फिर बैग झुलाती हुई कर्जन रोड के गोल दायरे की ओर जाने लगी। बंगलों की कतार में आखिरी बंगले तक पहुंचने से पहले ही बंगलों के बीच की गली में से एक आदमी निकला। काले रंग का सूट पहने हुए था। महेंद्र को लगा जैसे महिला के इंतजार में ही गली में कहीं छिपा खड़ा था, और दोनों झट से कर्जन रोड की ओर घूम गए। कोई मामला चल रहा है, महेंद्र ने मन ही मन कहा, और सहसा उसका मन छटपटा उठा। क्या मालूम, साथ ही साथ सुषमा का भी कोई और मामला चल रहा हो। क्या मालूम, इस वक्त कोई दूसरा आदमी सुषमा के फ्लैट में मौजूद हो और सुषमा उसके कोट के कॉलर के साथ खेलती हुई वही वाक्य फुसफुसा रही हो जो उसे सुनाती रही थी। उसका मन चाहा भाग कर जाए और सुषमा को रंगे हाथों पकड़ ले, मेरे सामने प्रेम की सौगंध खाती रही। मुझे तो न दिन का छोड़ा और न जहान का, और खुद एक करतूते करती रही है। उसे लगा जैसे सुषमा की काली काली चमकती आंखों के पीछे दूर कहीं सुषमा के अभिसारों की स्मृतियां बंद पड़ी हैं और उन पर ढक्कन इतने जोर से बंद किया गया है कि वह कभी भी खुलता नहीं, और उसके बाहर भुलावे के लिए सुषमा की आंखें चमकती रहती हैं ताकि किसी को भास न हो पाए कि उसके पीछे कोई ताकि किसी को भास न हो पाए कि उसके पीछे कोई कक्ष है जिसमें अभिसारों के नाक भरे पड़े हैं। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे सुषमा की काली चमकती आंखें किसी नाग की चमकती आंखें हैं जो अभिसारों के कक्ष की रखवाली पृष्ठ संख्या 14 कर रही हैं। महेंद्र विचलित हो उठा। यह औरत जो अभी अभी यहाँ से होकर गई है, यही क्यों? सड़क पर चलने वाली प्रत्येक स्त्री की स्वच्छ सरल चमकती आंखों के पीछे उसके अभिसारों की स्मृतियां बंद पड़ी रहती हैं। किसी को पता नहीं चल पाता कि उस स्त्री ने किसके किसके साथ छल किया है। तभी महेंद्र को सुषमा की छाती पर झूलते लॉकेट की याद आई। पतली सी सुनहरी चेन के साथ लगा हुआ लॉकेट नीचे गले के ब्लाउज के ऊपर कभी छाती के अयन बीचों बीच टिक जाता, कभी फिसल कर एक ओर को लुढ़क जाता था। कभी सुषमा बातें करती हुई चेन को मुंह में दबा लेती और लॉकेट उसकी ठुड्डी के ऊपर लटक जाता। कभी तकिए के सहारे अधलेटी उसे दाएं हाथ की तर्जनी पर लपेट लेती। तभी महेंद्र की नज़र लॉकेट में लगे चित्र पर पड़ी थी। लॉकेट में महेंद्र की तस्वीर लगी थी, छोटी सी, कहीं से काट कर लगाई हुई। उसे पहचान कर महेंद्र हैरान भी हुआ था और विचलित भी, और सुषमा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अब जनाब की नज़र गई अपनी तस्वीर पर। मैं घंटों से उसे हिला डुला रही हूँ कि अब देखते हैं, अब देखते हैं। यह कहाँ से लाई हो सुषमा? यह तो तुम्हें नहीं पहनना चाहिए। मैं दफ्तर में तो इसे नहीं पहनती हूँ, मैं तो केवल घर पर पहनती हूँ। नहीं, तुम इसे उतार दो। यह तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? दफ्तर के ही एक पुराने ग्रुप फोटोग्राफ में से। मन की घबराहट के बावजूद महेंद्र सुषमा के स्नेह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। सुषमा ने बाएं हाथ से चेन को उठाया, क्षण भर उसमें लगे महेंद्र के चित्र को देखती रही, फिर उसे चूम लिया, और चूमते ही उसकी आंखें भर आईं। नहीं चाहोगे तो नहीं पहनूंगी, पर मैं इसे अपने पास तो रख सकती हूँ ना, या इसकी भी इजाज़त नहीं है? साए गहराने लगे थे, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। महेंद्र को एकाध बार कंपकपी भी हुई, सिर बोझिल हो रहा था। विचारों को कोई तरतीब नहीं दी जा सकती थी। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है, ये मेरे संस्कार हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। जवानी के 5-7 साल बाकी रह गए हैं, और जिन बातों में मेरा विश्वास है उनसे मैं चिपटा नहीं रहूँगा। जहाँ से प्रेम मिलेगा लूँगा, वह बुदबुदाया। कभी उसे लगता सुषमा शुरू से आखिर तक स्वांग रचती रही है। पृष्ठ संख्या 15 उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही है, उसे झूठ और फरेब के रेशमी डोरों से बांधती रही है, और वह अपना बचा खुचा अपनापन भी वहाँ खो आया है। यह निष्ठा सब बकवास है। कैसी निष्ठा? वह अपने से पूछने लगता। बीच बीच में कहीं प्रमिला की शांत आकृति अपनी झलक दे जाती। मेरा फर्ज है कि मैं उसे सब कुछ बता दूं और जैसे भी हो मानसिक स्थिरता हासिल करूं। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। सुषमा ठीक कहती थी, मैं सोचता बहुत हूँ, हर वक्त सोचता रहता हूँ। और उसे सुषमा का सहलाता हाथ अपने माथे पर महसूस हुआ। तुम्हें कोई क्लेश तो नहीं? तुम हर वक्त सोचते रहते हो। तुम अपना सारा क्लेश मुझे दे दो। और सुषमा ने जैसे अपना दामन पसार दिया था। डॉट डॉट